नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलवीव में इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री नेतन्याहू के साथ उनकी मुलाकात बेहद खास रही। उन्होंने बताया कि चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी, जल संसाधन प्रबंधन, कृषि, मानव पूंजी विकास जैसे क्षेत्र शामिल रहे। यरूशलेम में इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस प्रतिष्ठित सदन के समक्ष उपस्थित होना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। उन्होंने 1.4 अरब भारतीयों की ओर से मित्रता, सम्मान और साझेदारी का संदेश दिया।
थैंक्स टू यू, आई एम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया to address this august gathering, returning to a land to which I have always felt drawn. After all, I was born on the same day that India formally recognized Israel.
इजराइल के प्रधानमंत्री ने नेसेट को संबोधित करते हुए श्री मोदी को अपना प्रिय मित्र बताया और कहा कि वे इस यात्रा से अत्यंत भावुक हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल का महान मित्र और भारत इजराइल गठबंधन का प्रबल समर्थक बताया। नेसेट में प्रधानमंत्री मोदी का सभी ने खड़े होकर तालियां बजाते हुए स्वागत किया। इससे पहले तेल अवीव पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने औपचारिक स्वागत किया। इसराइल की संसद नेसेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले ऐसे नेता हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। सम्मान को प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ नेसेट मेडल को स्वीकार करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने हमेशा टकराव के बजाय संवाद, विभाजन के बजाय सहमति और संकीर्ण हितों के बजाय मानव केंद्रित विकास को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक साथ एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का अवलोकन किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने यरूशलम में आयोजित एक विशेष नवाचार प्रदर्शनी का दौरा किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि सूचीबद्ध निजी गैर वित्तीय कंपनियों ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में 10.1% की वृद्धि दर्ज की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने एक बड़े डिजिटल ठगी मामले में 6 राज्यों में व्यापक तलाशी अभियान चलाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली, कर्नाटक के बेंगलुरु, केरल के पलक्कड़, महाराष्ट्र के नागपुर, तेलंगाना के हैदराबाद और गोवा में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम विस्फोट की साजिश से जुड़े 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या 11 हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने पर फिल्म निर्माता लक्ष्मी प्रिया देवी और फिल्म बूम की पूरी टीम को बधाई दी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय सिनेमा के लिए गौरव का क्षण है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के संदर्भों में पर कड़ी आपत्ति जताई जाने के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने पुस्तक के वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और इसे निर्णय में त्रुटि बताते हुए खेद जताया है। आगामी होली के त्यौहार के दौरान यात्रियों की सुगम, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने व्यापक व्यवस्था की है। यात्रियों की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए रेलवे ने विभिन्न रेलवे जोन में 18 मार्च तक 1,244 होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। कोलंबो में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप की सुपर 8 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हरा दिया है। अहमदाबाद में आज दोपहर 3 बजे वेस्टइंडीज का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से, वहीं चेन्नई में शाम 7 बजे भारत का सामना जिम्बाब्वे से होगा। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश, बिजली और तेज हवाओं का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।